आज का टॉपिक ये है कि हम यमुना देवी के महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप बोलेंगे माता जी सडनली हम लोग 64 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा से यमुना देवी तक क्यों चले गए। अब उसका ये रीज़न है कि अभी गर्मियों की सीज़न आ गई है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो दिन में 2-3 बार नहा रहे हैं और नहाते समय हम क्या करते हैं, हमारे घर में बचपन से आदत थी कि जब नहाते हैं तो बकेट में पानी भर के फिर थोड़ा सा पानी जो है हाथ में लेके स्तुति करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु जलोस्मिन सन्निधिम कुरु। अब दिन में 3-4 बार ये बोल के जो है मुझे यमुना देवी की याद आ रही है कि भाई चलो अब गर्मी का सीज़न है, यमुना देवी की कुछ कृपा हो, ठंडी ठंडी हवा बहे। और दूसरा कारण ये भी है कि जब हम भगवान की महिमा की चर्चा करते हैं तो भक्तों को आनंद मिलता है और जब भगवान के भक्त की चर्चा करते हैं तो भगवान को आनंद मिलता है। तो कभी कभी भगवान को भी आनंद देना चाहिए, भगवान के भक्तों की महिमा का गुणगान करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि आज हम यमुना देवी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे भक्ति जीवन जो है वो वृंदावन धाम के इर्द गिर्द घूमता है और जब हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो कृष्ण के साथ लगी हुई चीज़ क्या है। कृष्ण मतलब हमें राधा रानी याद आती है, कृष्ण मतलब वृंदावन की गाय, कृष्ण मतलब गोवर्धन, कृष्ण मतलब गोपिया, कृष्ण मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब तुलसी और वृंदावन मतलब कृष्ण मतलब यमुना नदी। तो गोवर्धन के तो बहुत बार हम चर्चा कर चुके, तुलसी महारानी की महिमा के बारे में भी चर्चा कर चुके, अब एक बार हम गोमाता के बारे में भी किसी संडे चर्चा करेंगे और आज की चर्चा जो है यमुना देवी के ऊपर करेंगे। कौन है यमुना देवी, कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारी भक्ति जीवन में उनका क्या रोल है, ये हम आज जानेंगे। यमुना देवी का जो आविर्भाव है वो गोलोक वृंदावन में कैसे हुआ, हम जानते हैं जिस तरह से भगवान के बाएं शरीर से, भगवान के जो शरीर है दिव्य शरीर है उनके बाएं ओर से राधा रानी उत्पन्न हुई थी और भगवान के हृदय से शटश्रृंग यानी गोवर्धन गिरिराज जी उत्पन्न हुए थे, कहाँ, गोलोक वृंदावन में। उसी तरह से भगवान की बाई भुजा से जो है यमुना देवी उत्पन्न हुए थे और जब भगवान राधा रानी से कहते हैं कि हम द्वापर युग में भू वृंदावन में जाएंगे और वहाँ लीला करेंगे तब राधा रानी कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, तो भगवान बोलते क्यों, तो राधा रानी बोलती है कि मैं वृंदावन के बिना, वृंदावन के जो ये कुंज होते हैं यमुना नदी है और गिरिराज के बिना मैं नहीं रह सकती, मुझे हमेशा ये तीन चाहिए। तो भगवान बोलते कि हाँ मुझे पता है इसलिए मैं ये तीनों को पहले ही भेज चुका हूँ। तो भगवान बोलते कि मैं ऑलरेडी आदेश दे चुका हूँ तो हम जब भूलोक में जाएंगे उसके पहले ही वहाँ गोवर्धन, वहाँ पे यमुना नदी और वृंदावन के जो कुंज है वे सब तैयार होंगे हमारी लीला के लिए। तो हम जानते हैं कैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में, आदिवराह पुराण में वृंदावन के बारे में बहुत डिटेल्स दिया हुआ है और वहाँ पे ये भी बताया गया है कि कैसे जब भगवान यमुना नदी को ऑर्डर करते हैं कि तुम नीचे जाओ भूलोक में जाओ तब यमुना नदी जो है भगवान की 3 बार परिक्रमा करती है और उसके बाद गोलोक में, गोलोक वृंदावन में जो निकुंज है जहाँ भगवान की गुह्य लीला होती है, निकुंज से पास होती हुई यमुना नदी नीचे की ओर प्रवेश करती है, नीचे की ओर जाने के लिए प्रस्थान करती है। जब यमुना नदी नीचे की ओर प्रस्थान करने लगती है तो यमुना नदी के साथ 2 और नदियाँ जुड़ जाती हैं, वो है गंगा नदी और विरजा नदी। अब विरजा नदी के बारे में तो हम जानते हैं कि कैसे गोलोक वृंदावन में विरजा नाम की गोपी थी और जब एक बार भगवान ने राधा रानी को वचन दिया था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ और वो नहीं आते हैं तब राधा रानी उन्हें खोजती है, कहाँ है, उनको खोज करती है। तब उन्हें पता चलता है कि भगवान जो है वो विरजा के कुंज में है और जब भगवान विरजा के कुंज में होते हैं तो श्रीदाम को बाहर खड़े रखते हैं सिक्योरिटी गार्ड, और जब कृष्ण को और विरजा को पता चलता है कि राधा रानी वहां आ चुकी है, तो दोनों जो है पानी में नदी के रूप में बदल जाते हैं, विरजा भी एक नदी के रूप में बदल जाते हैं। और एक बार ऐसा भी होता है कि विरजा जब भगवान की सेवा करती है तो उसके जो 7 पुत्र है वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं और भगवान की सेवा में अवरोधन बनते हैं, तो विरजा नदी उन्हें श्राप देती है कि तुम 7 जो है समुद्र के रूप में भूलोक में जाओगे और कभी एक दूसरे से नहीं मिलोगे, क्योंकि मिलने से तो तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो, तुम लोग सब झगड़ा कर रहे हो। तो ये जो 7 समुद्र हम देखते हैं भूलोक में, 7 द्वीपों के पास जो है, ये विरजा नदी के 7 पुत्र है। और विरजा नदी को भी राधा रानी श्राप देती है कि तुम जाके भूलोक में बहो, तो इसीलिए विरजा नदी जो है, गंगा नदी जो है, यमुना के साथ में मिल जाते हैं। और ये तीनों नदियां जो मिलके नीचे की ओर प्रस्थान करती है। अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो कैसा है, नीचे के लोक है, भूलोक है, 14 लोक है, उसके ऊपर में एक आध्यात्मिक लोक है, ये भौतिक लोक है। आध्यात्मिक और भौतिक लोक के बीच में बहुत सारे कवरिंग है, इतना आसानी नहीं है कि आध्यात्मिक लोक से नीचे आ सके। तो ये नदी कैसे आई, जब इतने सारे कवरिंग है तो नदी आई कैसे? तो बोला गया है कि जब भगवान वामन देव का अवतार लेते हैं और वामन देव के अवतार के समय भगवान वामन देव बलि महाराज से क्या मांगते हैं, बलि महाराज से वो भूमि मांगते हैं, कितना भूमि, उनके 3 पैर जितने आ सके। तो वामन देव जब बलि महाराज से भूमि मांगते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, तो वामन देव जो अपना पग बढ़ाने लगते हैं तो उनका पग इतना बड़ा है कि उनके पग के अंगूठे से आध्यात्मिक जगत और मौतिक जगत के बीच में जो कवरिंग है उसमें छेद बन जाता है, छोटा सा छेद। अब वो छोटे से छेद से ये जो नदी है, ये जो तीनों नदी है, ये तीनों नदियों के कुछ बूंद भौतिक जगत में गिर जाते हैं। उसका मतलब हम जो ये गंगा नदी देख रहे हैं, ये यमुना देख रहे हैं, ये क्या है, वो नदियों के छोटे से बूंद है जो आध्यात्मिक जगत से गिर गए, क्योंकि भगवान ने आज्ञा दी तो वो कुछ बूंद उस होल से नीचे गिर गए। अब वहां से क्या करती है यमुना नदी, बहुत ही वेग से नीचे की ओर आती है और रास्ते में सुमेरु पर्वत जो है उसके बहुत सारे शिखरों को तोड़ते हुए वह नीचे प्रस्थान करती है। और जब वो हिमालय तक पहुंच जाती है तो वहां से गंगा मैया जो है वो अलग हो जाती है हिमालय की ओर, और यमुना नदी जो है वो कालिंद पर्वत के शिखर के ऊपर से नीचे उतरती है, मतलब शिखर से नीचे जाती है। क्योंकि वो कालिंद शिखर को छूती हुई नीचे आती है इसीलिए यमुना नदी का और एक नाम है कालिंदी, कालिंदी की पुत्री बोला जाता है, क्योंकि भूलोक में तो कालिंद पर्वत से ही उत्पन्न हुई है, ऐसा दृश्य हम देखते हैं। जिस तरह से भगवान को नंदसुत बोला जाता है, नंद महाराज का बेटा, क्या भगवान नंद महाराज के ही बेटे है? नहीं, भगवान तो सब जगह है, लेकिन जब भूलोक में आते हैं तो नंद महाराज के द्वारा आते हैं। उसी तरह से यमुना तो पहले से है लेकिन जब भूलोक में आते हैं तो कालिंद पर्वत से होती हुई आती है, इसलिए उसे कालिंदी कहा जाता है। तो कालिंद पर्वत के शिखर से वो नीचे आती हुई यमुनोत्री, यमुनोत्री गए हैं, कितने लोग यमुनोत्री गए हैं, तो यमुनोत्री से जो है यमुना जी नीचे की ओर आती है, और यमुनोत्री से फिर वो नीचे आती है बंदरपुछ। यमुनोत्री से थोड़ी दूर में एक जगह है बंदरपुछ, मतलब जहां पे हनुमान जी लंका को जलाने के बाद अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए आए थे। जो लोग गए हैं यमुनोत्री जानते होंगे, यमुनोत्री में यमुना का नदी कितना पानी कितना ठंडा होता है, तो वहां पे हनुमान जी जो है आके अपनी पूंछ ठंडी करते हैं। तो बंदर पूंछ होते हुए नीचे की ओर जाते हुए खांडवप्रस्थ, खांडवप्रस्थ मतलब इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ दिल्ली के पास, और फिर वह दिल्ली से आती हुई जाती है मथुरा, फिर मथुरा से वृंदावन, वृंदावन के अलग 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 कुंजों में अलग अलग लीला स्थली में जाते हुए चली जाती है प्रयाग, और प्रयाग में क्या होता है, फिर से मिलते हैं दोनों बहन गंगा और यमुना, और त्रिवेणी संगम होता है सरस्वती, और वहां पे तीनों मिलने के बाद चली जाती है समुद्र की ओर, और समुद्र में तीनों मिलने के बाद वहां पे एक घटना होती है। समुद्र में मिल जाने के बाद यमुना मैया फिर से ऊपर की ओर चली जाती है गोलोक वृंदावन, और गंगा माता नीचे की ओर चली जाती है। गंगा को जो है ऊपर आध्यात्मिक लोक में मंदाकिनी बोला जाता है, और उसी मंदाकिनी को भूलोक में गंगा बोला जाता है, और उसी गंगा को नीचे पाताल लोक में भोगवती बोला जाता है। तो गंगा क्या करती है, ऊपर भी पवित्र करती है, भूलोक में भी पवित्र करती है, और भगवान ने आदेश दिया है इसीलिए वो नीचे पाताल लोक में भी सबको पवित्र करती है। लेकिन यमुना नदी पाताल लोक नहीं जाती है, यमुना नदी बस यहाँ से भूलोक से ऊपर चली जाती है। एक्चुअली नदी कभी ऊपर नहीं जाती, नदी हमेशा नीचे की ओर प्रवाह करती है, लेकिन यमुना नदी ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ समुद्र से वो दोनों अलग हो जाते हैं, गंगा नीचे चली जाती है, यमुना ऊपर जाती है, और ऊपर में लोकालोक पर्वत को पार होती हुई वापस गोलोक वृंदावन चली जाती है। ये है पूरा यमुना नदी का रास्ता। तो भगवान के बोलने पे वो आती है नीचे, और इतने सारे लोकों को, लोक मतलब अलग अलग लोक को, स्वर्ग लोक है, अलग अलग लोक जो है सबको पवित्र करते हुए फिर ऊपर की ओर चली जाती है। तो यमुना नदी जब इस भूलोक में वो आती है तो उनके पिता का नाम है सूर्यदेव। सूर्यदेव विवश्वान की दो पत्नी थी, छाया और संगना। छाया के पुत्र थे मनु, और संगना के दो पुत्र, दो ट्विंस थे, यम और यमी। यम माने यमराज, यमी माने यमुना। जब भगवान सूर्य के पास उनकी पत्नी जाती है संगना, पुत्र के डिजायर से, इच्छा से, तो सूर्य का जो तेज है वो देख के डर जाती है, तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जब बेटे का जन्म होता है तब सूर्यदेव बोलते हैं कि क्योंकि तुम भय में थी, तो इसलिए तुम्हारा जो ये बेटा जन्म लेगा उसको देखने से भी सबको भय होगा। तो सर्वज्ञा जो संगना है वो बोलती, खुश नहीं है उस बात से। तो फिर यमराज उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, बेटी भी होगी तो यम को देख के सारे डर जाएंगे, लेकिन यमुना जो है, बेटी जो है, वो सबका उद्धार करेगी। तो ये दुनिया में जो है, जो पापी है, जो पाप करते हैं, वो सबका उद्धार यमुना देवी करती है। शास्त्र में कहा गया है कि यमुना देवी इतनी पवित्र है कि आपको यमुना में जाके स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यमुना का नाम स्मरण करो, सिर्फ स्मरण मात्र से सारे पाप नाश हो जाते हैं, उतना ज्यादा यमुना देवी जो है पवित्र है। तो यमुना चाहती थी कि वो भगवान कृष्ण को अपना पति बनाए। तो जब वो अपने पिता से बोली कि मैं तो भगवान कृष्ण से जो है विवाह करना चाहती हूँ, तो विवस्वान बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, कैसे हो सकता है। तो यमुना ने जिद पकड़ा कि नहीं, मैं तो कृष्ण से ही विवाह करूंगी। तब विवस्वान उसे गाइडेंस देते कि भाई फिर तुम ऐसा करो, जाके तपस्या करो, तप से भगवान को प्रसन्न करो। तो फिर यमुना जाती है खांडव प्रस्थ में, वहां वो तपस्या करती है बहुत सालों तक, और उसके आनंद के लिए उनके पिता जो है वो यमुना जो नदी है, नदी के नीचे एक भवन का निर्माण करते हैं। तो यमुना जो है परसोनिफाइड उस भवन में रहती है और तपस्या करती है। तो अब ये कथा ऐसे आती है कि खांडव प्रस्थ जब पांडवों को दिया गया, जब राज्य को डिवाइड किया और हस्तिनापुर दुर्योधन को दिया गया और खांडव प्रस्थ पांडव को दिया गया, खांडव प्रस्थ कुछ नहीं था, एक यूजलेस जमीन था, वहां कुछ नहीं होने वाला था, जंगल था। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अग्नि को जो है ऑर्डर करते हैं कि तुम खांडव प्रस्थ में जितने भी वृक्ष है सबको तुम खा लो, निगल लो। तो अग्नि तो बहुत खुश हो जाते हैं, वो सारे वृक्ष को खाते हैं। क्योंकि ये मौका दिया गया, अग्नि बहुत खुश होके भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं तुमको कुछ अस्त्र शस्त्र देना चाहूंगा। तो अग्नि जो है ये बहुत सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन को और कृष्ण को प्रदान करते हैं। जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तब भगवान जो है कोई वृक्ष के नीचे आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी खांडव प्रस्थ में जो है अग्निदेव ने सारे जो जंगली, जो जंगल है, जो वृक्ष पौधे है सबको खा लिया है। तो जब वे विश्राम करते होते हैं तब अर्जुन देखता है दूर से कि नदी के किनारे कोई स्त्री जो है वो गमन कर रही है, घूम रही है यहां से वहां, और वह स्त्री सुंदर है और उसके गले में कमल पुष्प की माला है। तो अर्जुन जाके उन्हें विनम्र भाव से पूछते हैं कि देवी आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, आसपास में जंगल है, आप अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हैं, आप कौन है और आपके पिता का नाम क्या है। तो तब ये बताती है कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ और उस इच्छा से मैं यहाँ बहुत सालों से तप कर रही हूँ। और फिर अर्जुन जो है भगवान को जाके प्रार्थना करते हैं, निवेदन कर रही है कि आप उसे स्वीकार करो। फिर भगवान इमीडिएटली जो है कालिंदी को स्वीकार करते हैं, उसे रथ पे चढ़ाते हैं और वो लोग द्वारका की ओर चले जाते हैं। और फिर द्वारका जाने के बाद भगवान जो है कालिंदी से विवाह करते हैं। तो ऐसे भगवान जो है कालिंदी को अपनी चौथी पत्नी जैसे स्वीकार करते हैं। तो ये है यमुना का आविर्भाव, गोलोक वृंदावन से आना, और आने के बाद में यहाँ भगवान की पत्नी के रूप में द्वारका लीला में भी भाग लेना। अब अगर हम श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब से इस भूलोक में जन्म लिया या आविर्भाव हुए तब से लेके अंत तक यमुना को कभी नहीं छोड़ा। राधा रानी को छोड़ दिया वृंदावन में, कभी रुक्मिणी को छोड़ दिया द्वारका में, लेकिन यमुना तो सब समय भगवान के साथ है। जब मथुरा में भगवान का जन्म होता है और वसुदेव भगवान को टोकरी में ले जाते हैं तो सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, यमुना नदी को पार होते हैं। और सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, जो टोकरी में वासुदेव उनको ले जाते हैं भगवान वहां से गिर जाते हैं यमुना नदी में, और फिर वासुदेव उनको खोजने लगते हैं कि कहाँ गिर गया छोटा सा शिशु, और फिर उसको जो है उठा लेते हैं। कुछ कुछ शास्त्र में कहा गया है कि भगवान गिर जाते हैं पानी में, कुछ शास्त्र में कहा गया है कि भगवान गिरते तो नहीं है बट टोकरी में सिर पे है, लेकिन उनके पैर छूने के लिए जो है यमुना नदी वासुदेव को जो है ढक लेती है और भगवान के पैरों को छू लेती है और उसके बाद वो नीचे हो जाती है। उसका मतलब यमुना भगवान का चरणामृत भी है। हाँ, यमुना नदी साधारण नदी नहीं है, इसलिए जब हम वृंदावन जाए तो हमें मेडिटेट करना चाहिए कि ये जो नदी हम देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि एक पुराण में कहा गया है कि अगर आप यमुना नदी को सिर्फ प्रेम से देखो और कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खड़े खड़े प्रेम से देखो यमुना नदी के सामने, तो भी आप पूर्व में किए हुए सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और बोला यमुना नदी को अगर आप प्रेम से देखो तो भगवान का प्रेम वो आपको दे सकती है, उतना सामर्थ्य यमुना नदी में है, भगवत प्रेम प्रदान कर सकती है। तो यमुना नदी भगवान का चरणामृत है। चरणामृत हुआ ना, हम लोग चरणामृत लेते हैं, चरणामृत मतलब क्या, जो पानी भगवान के चरणों को छुआ है वो चरणामृत है। यमुना नदी तो भगवान को पूरा पूरा जो है अभिषेक की है। जब भगवान देवकी वसुदेव के कारागार में आते हैं तब देवकी जी ने भी भगवान का अभिषेक नहीं किया है, लेकिन सबसे पहले अभिषेक कौन करते हैं, यमुना जी करती है। तो सर्वप्रथम यमुना जी भगवान के साथ है, और उसके बाद अगर आप देखो भगवान की सारी लीलाओं में यमुना जी, उनके सखा के साथ भगवान कहाँ जाते थे, यमुना के तट पर हमेशा। वो असुरों को मारने के बाद में कोई अच्छा स्थल ढूंढते थे जहां पे यमुना नदी बह रही हो, वो ढूंढते थे कि कहाँ हो रहा है, कहाँ यमुना नदी बहती है, वो वहां ही जो है अपने सखाओं के साथ में भोजन करते थे। ब्रह्म विमोहन लीला कहाँ हुआ, यमुना नदी के पास, भगवान यमुना नदी के पास में भोजन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या है, कभी बाएं हाथ से खा रहे हैं तो कभी दाएं हाथ से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या है, मधुमंगल की झूठी छांस है। मधुमंगल को ठाकुर जी ने क्या किया, ठाकुर जी ने बोला कि देखो भैया सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आओ, हम जैसे आजकल के मॉडर्न उसमें बोला जाता है पॉटलॉक लंच, सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आओ और सब मिलके खाते हैं। तो भगवान ने बोला देखो भैया सब अपने अपने घर से कुछ लेके आओ और सब मिलके खाते हैं। अब सारे अपने अपने घर से कुछ लेके आए तो मधुमंगल ने सोचा मैं कहाँ से लेके आऊँ, वो तो बहुत ही गरीब थे। तो मधुमंगल की माँ ने क्या किया, पांचों घरों से जाके थोड़ी थोड़ी छाछ लेके आए। अब जब दान में दी हुई छाछ थी तो छाछ खट्टी थी, तो पांचों घर से मिलाई हुई जो छाछ है वो तो एकदम खट्टी है। तो मधुमंगल जब खट्टी छाछ लेके आया तो सोचने लगा कि अगर भगवान कृष्ण वो छाछ पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो भगवान जब मधुमंगल को बोलते हैं कि भैया सब तो कुछ ना कुछ लाए, तुम क्या लाए हो, तो मधुमंगल पहले बोलते मैं कुछ नहीं लाया, बोलते झूठ मत बोलो, जरूर तुम कुछ तो लाए हो। जब भगवान ने पकड़ लिया कि हाँ वो तो थोड़ा छाछ लेके आए, तो भगवान उससे खींचने लगे वो छाछ। तो मधुमंगल ने सोचा कि भगवान वो छाछ पी लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो मधुमंगल ने क्या किया, ये छाछ का डब्बा खोला और सारी छाछ एक साथ में पी गया। अब जब आप एक साथ में पीने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, आपके गाल फूल जाएंगे, हो जाएगा ना एकदम छाछ एक साथ में। तो भगवान ने बोला अच्छा मुझसे, तो भगवान ने क्या किया, दोनों गाल में जोर से मारा, जैसे जोर से मारा छाछ बाहर, जैसे छाछ बाहर भगवान पीने लगे। और ये जब ब्रह्मा जी ने देखा तो चक्कर आ गए उनको, बोले यहाँ पे इतनी वेद मंत्र पारायण करके भगवान को भोग लगाते और यहाँ मधुमंगल की झूठी छाछ पीने के लिए तैयार है भगवान, ये नहीं हो सकते भगवान, ये तो कुछ गलत फहमी हो रही है। तो इसलिए यमुना नदी के तट के पास हो गई ब्रह्म विमोहन लीला, जहाँ पे वो चेक करना चाहते थे कि ये भगवान है कि नहीं। तो आप देखो ये सारी लीला यमुना नदी के पास हुई है। अच्छा, भक्ति जीवन में सबसे मुख्य है राधा रानी, हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते, हमें राधा रानी के द्वारा जाना है। अब राधा रानी कहाँ से मिली हमको, वो भी तो इस भूलोक में यमुना नदी से तो आई। रावल में वृषभानु महाराज एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठे तो देखा कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या, सूर्य उदय होने से 1.5 आवर्स पहले, तब तो अंधेरा होता है। और वृषभानु महाराज ने देखा कि ये इतनी रोशनी यमुना नदी से कहाँ से आ रही है, सूर्य तो अभी तक उदय नहीं हुआ या मैं लेट हो गया आज उठने में। फिर देखा कि नहीं ये रोशनी तो कोई कमल पुष्प से आ रही है यमुना नदी में। और फिर थोड़े पास गए तो देखा कमल पुष्प के ऊपर में तो एक सोने का डब्बा है, और फिर वो जो सोने का डब्बा खोला तो देखा उसमें तो राधा रानी है। और फिर वहां ब्रह्मा जी आते हैं और वृषभानु महाराज को बताते हैं कि भाई तुम इसको अपनी पुत्री जैसे स्वीकार करो। तो उसका मतलब राधा रानी भी आई कहां से, यमुना नदी से। अच्छा, भक्ति जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भागवत का श्रवण करना। अब भागवत कहां बोला गया, अब आप बोलेंगे नहीं माता जी भागवत तो गंगा तट के पास बोला गया, नहीं नहीं, आप श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19th chapter खोलिए, मेरे ख्याल से उसका 4th या 5th श्लोक है या प्रथम श्लोक होगा, एक बार देखिए 19th chapter। उसमें बोला गया है, वहां पे लिखा है कि गंगा के तट पे परीक्षित महाराज को भागवत बताया गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। उसका परपोट पढ़िए, तात्पर्य वहां पे श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जीव गोस्वामी ने कन्फर्म किया है कि भागवत जो है वो गंगा के तट नहीं यमुना के तट के पास बोला गया था, क्योंकि परीक्षित महाराज हस्तिनापुर के राजा थे और हस्तिनापुर जो है दिल्ली के पास पड़ता है जहां यमुना नदी फ्लो होती है। और वहां पे बताए थे कि जीव गोस्वामी ने कन्फर्म किया है, क्यों कन्फर्म किया, क्योंकि उस श्लोक में बोला गया है कि ऐसी नदी के पास परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया जो नदी में भगवान कृष्ण के चरण के रज, भगवान के चरणों की माटी में मिला हुआ जो पानी है, तुलसी के जो मंजरी होते हैं तुलसी में जो मिला हुआ पानी है, उस नदी के पास भागवत बोला गया। अब भगवान के चरण की रज तो यमुना नदी में ही मिली है, और वृंदावन के पास है ना यमुना नदी, इसलिए तो वृंदा तुलसी सब समय उसमें मिल जाती है। तो उसका मतलब जीव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो सही है, भागवत जो है वो भी यमुना के तट के पास बोला गया। तो राधा रानी भी यमुना जी से मिली, हमें भागवत भी यमुना तट के पास से मिला, सारी लीलाएं भी यमुना तट के पास हुई, भगवान अपने सखाओं के साथ भी यमुना तट के पास लीला करते थे। हम जो काली लीला इतना पसंद करते वो भी यमुना नदी में हुई, भगवान ने प्रथम बार रासलीला भी यमुना नदी के पास की। तो हम देखे हर हमारी भक्ति जीवन यमुना नदी के इर्द गिर्द है, कितना इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी
सब समय चैतन्य महाप्रभु जहां कोई जलाशय देखते थे वो सोचते थे यमुना है और उसमें खुद जाते थे। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो तो उसमें आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाह रहे थे और भक्त लोग नहीं चाहते थे कि वो वृंदावन जाए, तो वो चैतन्य महाप्रभु को जो है वो लोग भुला भुला के कोई और रास्ते में लेके आ गए। तो घूम फिर के चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुंच गए, वहां पे गंगा नदी बह रही है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे नित्यानंद प्रभु कि ये कहाँ हम लोग आ गए, ये वृंदावन जाने का रास्ता है क्या? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हाँ हाँ वृंदावन जाने का ही रास्ता है। तो जब गंगा नदी को चैतन्य महाप्रभु देखते तो बोलते अच्छा ये तो यमुना है, और उसको यमुना समझ के चैतन्य महाप्रभु उसमें खुद जाता है। और फिर अद्वैत आचार्य नौका लेके आते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु को जो है वहां गंगा से जो है निकाल के नौका में बिठाते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को पूछते हैं कि तुम कैसे आ गए, तुमको कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? फिर अद्वैत आचार्य बोलते हैं आप वृंदावन में नहीं, आप शांतिपुर में हो, अब मैं मेरे घर ले जा रहा हूँ आपको। तो चैतन्य महाप्रभु जहां देखते थे कोई जलाशय, जैसे चैतन्य महाप्रभु जारीखंड, हम जानते हैं जारीखंड के जो जंगल था उसमें चैतन्य महाप्रभु ने सारे जानवरों को नृत्य करवाया हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और उस जारीखंड के जंगल में भी जो जलाशय होते थे चैतन्य महाप्रभु वहां खुद जाते थे, यमुना यमुना बोल के खुद जाते थे। वो जहां देखते उन्हें यमुना की याद आती थी। जगन्नाथ पुरी में एक बार चैतन्य महाप्रभु आई तोता मंदिर के पास से चल रहे थे। वो जब आई तोता मंदिर के पास से चले जा रहे थे तो उन्हें क्या देखा कि समुद्र में जो चंद्रमा की किरण है जब समुद्र पे गिरती है तो वो समुद्र बहुत विशेष लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो जब उन्होंने देखा तो वो थोड़े टाइम के लिए भूल गए कि मैं जगन्नाथ पुरी में हूँ। वो दृश्य देख के उनको लगा था ये तो यमुना है, और वो समुद्र में खुद गए कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। अब वो समुद्र में खुद गए, खुद के क्या हुआ, समुद्र में तैरने लगे, क्योंकि उन्होंने सब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस छोड़ दिया था, तो एक शव के रूप में तैरने लगे। अब तैरते तैरते वो कोणार्क मंदिर पहुंच गए। अब कोणार्क मंदिर के पास में वहां पे कोई मछुआरा जो है वो मछली पकड़ रहा था, तो उसने देखा कि ये मेरा मछली पकड़ने का जो नेट है इतना हैवी क्यों हो गया, लगता है मैंने बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। तो बहुत मेहनत से जो है वो मछुआरा वो जो नेट को है निकालता है, जब निकाल के नौका में रखता है तब देखता है कि ये तो कोई मछली नहीं है, ये तो कोई इंसान है, और वो भी बहुत बड़ा इंसान। चैतन्य महाप्रभु की हाइट थी 7 फीट, काफी बड़े थे वो, तो बोले इतना बड़ा, तो वो सोचने लगा कि शायद ये कोई शव है। तो जब वो नेट से जो है चैतन्य महाप्रभु को निकालने लगा तो उस दौरान चैतन्य महाप्रभु के शरीर को उसने छू लिया। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु शरीर को छू लिया तो वो भी भक्ति में पागल हो गया, रोने लगा, सारे रोंटे खड़े होने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए रोने लगा। अब उसको लगा कि मैं रोना चाहता नहीं हूँ, रोना क्यों आ रहा है, मैं हरी हरी बोलना चाहता नहीं हूँ, हरी हरी मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, जरूर इस शव में कोई भूत है। तो वो डर के मारे भागा कि इसको और छूना नहीं, चलो यहां से भागते। और वहां पे पूरी में सब ढूंढ रहे कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, अभी तो थे यहाँ पे, अभी कहाँ है। तो सब जगह उनको ढूंढते ढूंढते वे कोणार्क पहुंच गए। वहां पे स्वरूप दामोदर सबको पूछ रहे कि आपने किसी को देखा, 7 फीट के है, गोरे है, कोई बता नहीं पा रहा है। तो देखा कि ये मछुआरा आ रहा है, बहुत भयभीत है, हरी हरी बोल रहा है, इनको डाउट आए हरी हरी क्यों बोल रहा है, जरूर चैतन्य महाप्रभु को छुआ है। तो जाके पूछने लगा भैया तुमने किसी को देखा 7 फीट के लंबे? बोला पूछो ही मत, एक शव को मैंने अभी निकाला मेरे नेट से, उस शव के अंदर में कोई भूत है, वो भूत मेरे ऊपर चढ़ गया है, अब देखो मेरे को क्या हो रहा है। और फिर ये लोग ने जो है शांत किया। तो बोला कहाँ, तो कहाँ है वो शव हमको दिखाओ? बोलता मैं अभी नहीं दिखा सकता, मुझे भूत भगाने के तांत्रिक के पास जाता हूँ, मेरा भूत भगाना है। तो स्वरूप दामोदर ने बोला कि तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं तांत्रिक हूँ, मैं बहुत लोगों का भूत भगाया, तुम्हारा भूत मैं अभी भगाता हूँ। फिर स्वरूप दामोदर ने क्या किया, उसको ऐसा पकड़ा और 3 झापड़ मारे जोड़ जोड़ से, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोला तो ये थोड़ा ठीक हो गया। बोला देखो तुम्हारा भूत अब जो है भाग गया, बताओ वो कहाँ है वो शव। और फिर लेके गए उसको चैतन्य महाप्रभु के पास, और फिर वहां पे जो है वो महाप्रभु को जो है थोड़ा पानी छिड़क के उनको उठा के फिर अपने साथ पूरी ले गए। तो महाप्रभु जहां जाते थे वहां पे खुद जाते थे, ये यमुना है, ये यमुना है, खुद जाते थे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे तो ज्यादा एक बार सारे जो वृंदावन के जो 12 वन है सबकी परिक्रमा कर ली, लेकिन बार बार नहीं घूमते थे, वो वहीं बैठे रहते थे इमली ताला। हम जब वृंदावन जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना इमली ताला, सबसे पहले जाते हैं रिक्शा में, जब सारे गोस्वामी के मंदिर जब चीरघाट वगैरह दर्शन करते तब हम एक जगह में जाते हैं इमली ताला, तो वहां पे जो इमली का झाड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्वीट पास टाइम की जगह है। जब एक बार भगवान रासलीला कर रहे थे तो देखा कि ये गोपी लोगों को बहुत अभिमान आ गया कि भगवान तो हमारे साथ, हमें पसंद करते, हमें प्यार करते, तो उनका अभिमान दूर करने के लिए भगवान छुप गए। तो छुप के क्या किया, इमली ताल, ये जो इमली का झाड़ है उसके नीचे आके बैठ गए। अब भगवान आ तो गए लेकिन उनको भी विरह फील हो रहा है, उन्हें गोपिका याद आ रही है, उन्हें राधा रानी याद आ रही है, तो वहां पे भगवान जो है राधा 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 करते हुए बैठ गए। अब जब भगवान राधा रानी को इतना बार याद कर रहे थे तो भगवान का जो श्याम रूप है, काला रंग है, वो गोरा बन जाता है, उनका शरीर पूरा गोरा हो जाता है, क्योंकि वो राधा रानी को याद कर रहे हैं तो राधा रानी के शरीर का रंग ले लेते हैं। और जब राधा रानी ढूंढती हुई वहां पहुंचती है तो वो विश्वास नहीं कर पाती कि ये कौन है, मेरे कृष्ण तो काले हैं। और फिर वो कृष्ण को पूछते कि आप ऐसे कैसे इस रंग में कैसे आ गए, फिर वो राधा रानी को बताते हैं कि मैं तुमको जो है याद करता हुआ इस रंग में बदल गया। और फिर वो बोलते हैं कि मैं कलयुग में आऊंगा, तुम्हारा रंग और तुम्हारे भाव को स्वीकार करके मैं कलयुग में ये जो गोपियों का प्रेम है उसका दान करूंगा सबको। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं राधा रानी का भाव लेते हुए, वो भी इमली तालाब के नीचे जो है झाड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वो कृष्ण 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 बोलते हैं। और जब वो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तब क्या होता है, वो काले रंग के बन जाते हैं। तो जब दूसरे भक्त उनको देखते हैं तो ये सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या है, चैतन्य महाप्रभु का रंग तो गोरा है, ये काले कैसे बन गए, कि इतना ज्यादा वो याद कर रहे हैं कृष्ण को कि वो कृष्ण जैसे बन जाते हैं। इसलिए आप देखिए जो भक्त है बहुत सुंदर लगते हैं। क्यों सुंदर लगते हैं, क्योंकि जो बहुत सुंदर है वो उसको याद करते रहते हैं, है ना। हाँ, बहुत बार हम, मैं एग्जाम्पल देते रहती हूँ कि जब प्रभुपाद जी को देखे तो हम बहुत आकर्षण हो जाता है। अब समझ में नहीं आता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत यंग एंड हैंडसम है, बूढ़े है, बहुत सारी उन जो है क्या झुरिया है फेस पे, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे सुंदर अगर कोई है तो श्रील प्रभुपाद है। तो किस लिए ये सुंदरता उनमें दिखाई देती है, क्योंकि जो सुंदर है वो उनसे प्यार करते और उनके बारे में सोचते रहते, इसलिए वो भी सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को सुंदर बनना है तो वो जो सुंदर है उसके बारे में आप अलग अलग लोशन या सोप बदलने से सुंदर नहीं होंगे, उसको याद करेंगे तो आप सुंदर लगेंगे। वो जब डव सोप नया नया आया था तो उसके एडवर्टाइजमेंट में बोलते थे ना कि भाई आप इतने सुंदर क्या क्यों लग रहे हो, इज इट लव, तो वो लोग बोलते थे नो इट्स नॉट लव इट इज डव, ये डव सोप इतना अच्छा है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो हम जो भक्त है हम ये बोलते हैं कि भाई इट इज नॉट डव इट इज नॉट लक्स इट इज लव, लव फॉर कृष्णा, लव फॉर कृष्णा मेक्स यू लुक ब्यूटिफुल। तो कृष्ण को याद करते करते चैतन्य महाप्रभु काले लगने लगे, तो एकदम क्योंकि भगवान को याद करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे वो उनकी दिनाचार्य थे, अक्रूर घाट जाते थे, वहां पे लंच करते थे, फिर आके पूरा दिन जो है इमली ताला वहां बैठे रहते थे और यमुना की तरफ एक टक देखते रहते थे, पूरा दिन यमुना की ओर देखना। तो भगवान कृष्ण को यमुना बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। और जो यमुना नदी की सेवा करते हैं, जो यमुना की पूजा करते हैं, उसे यम यातना नहीं होती, कभी यमराज उन्हें तकलीफ क्यों नहीं देते, क्योंकि ये वरदान यमुना ने यमराज से मांगा है। रक्षाबंधन होता है ना, जब बहन भाई को राखी बांधती है तब क्या करती है बहन, आजकल की बहन डेरी मिल्क मांगती है, एडवर्टाइजमेंट में देख देख के भाई डेरी मिल्क दे दो काफी है। लेकिन यमुना ने यमराज से मांगा कि मुझे रक्षाबंधन में ये गिफ्ट चाहिए कि जो भी मेरे नदी में स्नान करेगा तुम उसे अपना मुंह मत दिखाना। उसका मतलब माता जी जितने लोग जितने भी पाप करें एक बार यमुना में स्नान करेंगे तो क्या यमराज के पास नहीं जाएंगे, हाँ सच में नहीं जाएंगे, तो क्या पापों से मुक्त हो जाएंगे, नहीं पाप से मुक्त नहीं होंगे, उनका कोट बदल जाएगा। जैसे इस भौतिक जगत में भी दो कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। क्रिमिनल केसेस क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, लैंड डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में जाते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और कोई और कोर्ट में जाते, उसी तरह से जो यमुना में एक बार स्नान कर लेता है, यमुना नदी का पान कर लेता है, वो पाप करेंगे तो भी उनका कोर्ट अब कृष्ण का कोर्ट है, उन्हें यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। हिंदी में कहावत है ना, गंगा का स्नान करना है, यमुना का पान करना है। गंगा में स्नान करने से दुख से मुक्त होते, यमुना का पान करना, यमुना को चरणामृत हमें लेना है, क्योंकि भगवान उसमें नहाए हैं। भगवान ने कितनी सारी लीलाएं यमुना में की है, ये भी प्रसिद्ध लीला है, कैसे भगवान नौका विहार करते हैं, यमुना में होली खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। शास्त्र में ये भी बोला गया है कि जब गंगा को 100 बार पवित्र किया जाए तो उसका नाम यमुना है, और गंगा देवी भी यमुना की स्तुति करती है। गंगा देवी यमुना को प्रार्थना करती है कि आपके पानी में भगवान नहाते हैं, इतनी क्रीड़ा करते हैं, मुझे भी ये अवसर चाहिए। तो इसीलिए यमुना देवी कृष्ण को रिकमेंड करती है कि काइंडली आप गंगा देवी की सेवा लो। तो क्योंकि यमुना जी रिकमेंडेशन देती है, भगवान मानसी गंगा को उत्पन्न करते हैं। हम जब वृंदावन जाते हैं, हम लोग जाते हैं ना मानसी गंगा, कैसे नंद महाराज और यशोदा माता भगवान को बोलते, चलो हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और भगवान बोलते उतना दूर क्यों चल के जाना, मैं गंगा को यहीं उत्पन्न करता हूँ। और फिर वहां मानसी गंगा का भगवान अपने माइंड से, मन से गंगा को उत्पन्न करते हैं, और फिर मानसी गंगा में भगवान नौका विहार करते हैं। हम सब जानते हैं ये पास टाइम, कैसे गोपी का लोग एक बार दही दूध माखन सब लेके जो है मानसी गंगा को पार करके जाना चाहती है, और वहां पे नौका चलाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ भगवान जो है कपड़ा ओढ़ के बैठ जाते हैं। अब गोपी का ढूंढ रही है कि यहाँ पे कोई नहीं है नाविक, तो भगवान बहुत एक बूढ़े आदमी जैसा नाटक करके बोलते हैं कि आ जाओ मैं आपको पार करा देता हूँ। और जब सारी गोपी क्या बैठ जाती है, सारी गोपियां राधा रानी नौका में बैठ जाती है, और भगवान जो है नौका को धीरे धीरे लेके चले जाते हैं, और जब बीच रास्ते में आ जाते हैं तब एकदम नौका हिलने लगती है, और भगवान बोलते हैं मुझ में और शक्ति नहीं है, मैं नौका और चला नहीं सकता। और गोपी का लोग डर जाती है कि ऐसा मत करो हम सब डूब जाएंगे, तो भगवान बोलते कि फिर वो जो आप लाए हो मटकी में वो मुझे खिला दो तो मुझे शक्ति आएगी, तो मैं और आगे चला पाऊंगा। तो जितना भी होता है गोपी का लोग का माखन मिश्री जो सब कुछ खा लेते हैं, और गोपी का लोग देखती रह जाती कि ये कैसा नाविक है, जितना लेके आए थे सब खा लिया। और उसके बाद में थोड़ा और चलाते हैं भगवान आगे, उसके बाद फिर से बोलते हैं कि नौका हिल रही है, बैलेंस ठीक नहीं हो रहा है, थोड़े गोपी लोग मेरे पास में आके बैठ जाओ तभी जाके बैलेंस होगा। और फिर धीरे धीरे भगवान बोलते हैं कि भाई देखो नौका का बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि तुम लोग इतने सारे आभरण, ये जो इतने सारी ज्वेलरी पहन के आए हो बहुत ज्यादा हैवी है, तो एक काम करो ये सारे ज्वेलरी निकाल के जो है तुम पानी में डाल दो। और फिर राधा रानी बोलती हम ऐसा ना करें कि नाविक को ही पानी में डाल दे तो बैलेंस अच्छा हो जाए। हाँ बड़े आए, हमारी सारी ज्वेलरी को हम नहीं डालेंगे। नहीं, फिर भगवान नहीं मानते हैं, सोचते कि ये कैसा नाविक है, आप पहले तो सारी चीजें खा गए, आप बोलता है हमारे सारे ज्वेलरी नहीं डाल दो। और फिर जब वो भगवान जो शाल ओढ़े हुए उसको जब राधा रानी खींचती है तब देखते कि ये तो घनश्याम है, ये तो श्याम सुंदर है जो ये सारे नाटक कर रहा है। और फिर भगवान बहुत प्यार से जो है पूरी रात नौका विहार होता है, उसका फेमस पिक्चर हम सारे इस्कॉन मंदिर में देखते हैं जहाँ पे भगवान के साथ सारे राधा रानी गोपी का नौका विहार करते हैं। तो हम देखते हैं कि कितने सुंदर सुंदर पास टाइम्स जो है यमुना नदी के घाट पे हुए हैं। और यमुना नदी से एक इम्पॉर्टेंट विग्रह भी बाहर आया है राधा गोपीनाथ का। मधु पंडित महाशय जब राधा गोपीनाथ के विग्रह को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कहीं मिल नहीं रहे थे, तो एक दिन जो है वो दुख से जो है यमुना में खुद गए। अब जब यमुना के अंदर में खुद गए तो वहां पे उनको जो है गोपीनाथ जी का विग्रह मिलता है, और फिर वो गोपीनाथ को बाहर लेके आते हैं और फिर वहां पे गोपीनाथ जी का मंदिर स्थापना करते हैं। और यमुना नदी का मोस्ट फेमस पास टाइम तो है चीरहरण, वो पास टाइम भी यमुना नदी में हुआ है। जैसे गोपिका लोग के सारे कपड़े जो है भगवान चोरी करके झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कात्यायनी व्रत करती है गोपिका, वो भी वहां। तो ऐसे हम देखें कि यमुना नदी के पास कितने सारे अलग अलग लीला है। उसका मतलब सी टू बी पार्ट ऑफ लॉर्ड्स पास टाइम इज नॉट सच एन ईजी थिंग। भगवान की लीला में भाग लेना का अवसर मिलना कोई आसान बात नहीं है। और यमुना देवी का भाग्य देखिए, भगवान की प्राय सारी लीलाओं में यमुना देवी का कोई ना कोई भाग है। नरोत्तम दास ठाकुर का एक बहुत सुंदर भजन है जहाँ पे वो बोलते हैं कि मैं कैसा दृश्य मेरे मन में समाना चाहता हूँ। वो दृश्य कैसा है? यमुना का नदी है, नदी के ऊपर कमल का पुष्प है, कमल के पुष्प पे एक सोने का भवन है, सोने के भवन के अंदर राधा और कृष्ण एक सिंहासन, रत्न सिंहासन पे बैठे हुए हैं। ये कमल पुष्प की 8 पंखुड़ियां है, उस 8 पंखुड़ियों में राधा रानी की जो 8 प्रमुख गोपिकाएं हैं वो सारी खड़ी हुई है, सेवा कर रही है। और ऐसे दृश्य को मैं सदैव मेरे मन में रखूं, हे ठाकुर जी मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ऐसी बात नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। सो उसका मतलब ये जो वैष्णव आचार्य है वो भी जब भगवान का स्मरण करते हैं तो उसमें राधा रानी तो कंपलसरी होती है, उसके साथ में यमुना नदी भी कंपलसरी होती है। ये भजन आपने सुना है, वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मनोहर। अवृत कालिंदी नीरे राजा हम सकेली करे ताहे शोभे कनक कमाल। अवृत कालिंदी नीरे राजा हम सकेली करे ताहे शोभे कनक कमाल। बोल रहे हैं कि वृंदावन ऐसा स्थान है, चिंतामणि धाम है, दिव्य चिंतामणि धाम। चिंतामणि पत्थर समझते हैं ना, चिंतामणि पत्थर मतलब क्या है? आप जो मांगो वो पूरा होता है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वृंदावन जो धाम है उसका हर एक जगह चिंतामणि है। ऐसा नहीं कि वृंदावन की ये जगह या वो जगह, एवरीथिंग इन वृंदावन इज चिंतामणि, हर एक चीज। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं एक प्रवचन में कि जब आप गिरिराज की परिक्रमा करो तो चप्पल पहन के करो। जब मैंने पहली बार ये सुना, ये क्या बोल रहे हैं, गिरिराज की परिक्रमा चप्पल पहन के? हम तो वृंदावन में जाते तो सबसे पहले चप्पल निकाल के रख देते हैं कि वृंदावन चिंतामणि धाम है, वहां हमें कोई चप्पल का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में बोले है अपने प्रवचन में, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बोलते हैं कि वृंदावन जो धाम है ये चिंतामणि धाम है, यहाँ आप जो मांगते हो, आप जो इच्छा करते हो वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि चप्पल पहनो, क्योंकि आपकी इच्छाएं तो सारी होपलेस इच्छाएं होती है। आप वृंदावन भी जाओगे तो आप अपना सब वहां भी मेटेरियलिस्टिक थिंग ही मांगोगे, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरे बेटी का वो हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो आप तो वहां पे जाने के भी बेकार चीजें ही मांगने वाले हो। इसीलिए वृंदावन जो चिंतामणि धाम है उसको मत छुओ, चप्पल पहन के घूमो, इतना दिव्य है वृंदावन धाम। एक बार वृंदावन में गोवर्धन की परिक्रमा हो रही थी तो सामने सारे इस्कॉन के भक्त परिक्रमा कर रहे हैं और सामने एक लेडी चली जा रही है, व्रजवासी, अपने बेटे को ऐसे करके ली हुई है गोद में और चल के जा रही है, गोवर्धन की परिक्रमा कर रही है। रास्ते में चप्पल टूट गया। अब चप्पल वहां रिपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या किया, दोनों चप्पल को बांध के अपने सिर पे बांध लिया, सिर पे चप्पल रख के ऐसे करके बांध लिया। वहां पीछे से इस्कॉन के भक्त जा रहे थे तो बोला कि मैया ये क्या कर रही हो, चप्पल को क्यों सिर पे लेके जा रही हो? तो पीछे मुड़ी वृंदावन की, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, चप्पल को क्यों सिर पे, इतना पवित्र स्थल है, पवित्र जगह है, तुम चप्पल को क्यों सिर पे लेके घूम रही हो? तो उसने बहुत सुंदर बात बोली, बोला आप कितने साल से वृंदावन आ रहे हो? तो 12 साल से। 12 साल से आते हो, कितने बार गोवर्धन की परिक्रमा कर चुके हो? तो साल में एक बार करता हूं। क्यों करते हो गोवर्धन की परिक्रमा? गोवर्धन की परिक्रमा करने से पवित्र होते हैं। तो बोला अच्छा, तुम साल में एक बार गोवर्धन की परिक्रमा करने से पवित्र हो जाओगे और मेरे जूते जो इतने सालों से दिन रात गोवर्धन की परिक्रमा करे वो पवित्र नहीं हुए, क्या बात है? तुम्हारी इतनी भी समझ में नहीं आया? मेरे जो ये जूते हैं वो दिन रात गोवर्धन की परिक्रमा कर चुके, दिन रात इसी वृंदावन की गलियों में घूमते हैं, तो वो पवित्र नहीं हुए? और तुम साल में एक बार परिक्रमा करने से पवित्र हो गए? और फिर वो जो हमारे इस्कॉन के स्वामी जी थे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया कि मैया मुझे क्षमा कर दो, आप अपने चप्पल ऊपर ही रखो। ये है चिंतामणि धाम, वृंदावन चिंतामणि धाम है, वृंदावन का हर कोना कोना पवित्र है। तारा मध्य हेमा पीठा अष्टदले बेस्थित अष्टदले प्रधान नायिका, तारा मध्य हेमा पीठा अष्टदले बेस्थित अष्टदले प्रधान नायिका, तारा मध्य रत्न साने बोसियाचे दुई जाने श्याम संग सुंदरी राधिका, तारा मध्य रत्न साने बोसियाचे दुई जाने श्याम संग सुंदरी राधिका, ओ रूप लावण्या रासी अमिया पारी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे, ओ रूप लावण्या रासी अमिया पारी छे खासी हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमाए सदाए स्फुरक मोरा माना, नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमाए सदाए स्फुरक मोरा माना। तो नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं कि हे ठाकुर जी, मैं मेरे मन में मेरे हृदय में हमेशा ये चित्र चाहता हूँ, और उस चित्र में कौन है? यमुना की नदी है, नदी पे कमल का पुष्प है, कमल के पुष्प पे रत्न का सिंहासन है जिसमें राधा कृष्ण द्विजन दोनों बैठे हुए हैं। तो वैष्णव आचार्य तो हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या सोचना चाहिए, उसका मतलब जब भी राधा कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो यमुना नदी भी उसका भाग है। यमुना नदी में यमुना नदी अगर आप देखो, भगवान कृष्ण की अगर लीला आप देखो, बाल्य लीला, हर पल हर लीला में आप देखोगे यमुना का कोई ना कोई रोल है। भगवान जब सखाओं के साथ में प्रसाद लेते थे उसके बाद क्या करते थे? यमुना नदी में जाके हाथ धोते थे। अब एक बार ब्रह्मा को लगा कि यमुना नदी में हाथ धोते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, यमुना में मछली बन के चला जाता हूँ। तो भगवान जब हाथ धोते तो क्या होता है? जब आप हाथ धोते तो कुछ ना कुछ खाना लगा हुआ रहता है ना, वो जो भगवान का जो खाना लगा हुआ रहता है मतलब भगवान का महाप्रसाद। तो ब्रह्मा ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, अगर मैं मछली बन के रह जाऊँ तो भगवान जब अपना हाथ धोएंगे तो उनके हाथों से जो महाप्रसाद है वो मुझे मिल जाएगा। तो ब्रह्मा मछली बन गए, भगवान गए हाथ धोने के लिए। जब हाथ धोने के लिए जाने वाले थे तो भगवान तो अंतर्यामी है, देखा ये तो ब्रह्मा है, बोला अच्छा बहुत चालाक, मेरा बेटा मुझसे चालाकी। तो भगवान ने क्या किया, एक पलास पत्ता जो होता है, पत्ता का जो है छोटा सा दोना बनाया, पानी वहां से लिया और बाहर में जाके हाथ धो लिए। तो ब्रह्मा समझ गए कि ऐसे इतना आसानी से भगवान का महाप्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन वो महाप्रसाद यमुना नदी को रोज मिलता है, रोज मिलता है ना, भगवान रोज वहां पे यमुना नदी में हाथ धोते हैं। समझिए कितनी पवित्र है यमुना नदी, कितनी पवित्र है। सो वृंदावन की हर कुंज में, वृंदावन के हर कुंड में यमुना की नदी है। हम जो कुसुम सरोवर जाते हैं वो क्या है? कुसुम सरोवर भी यमुना की नदी है। कुसुम सरोवर में पहले कुछ नहीं था पानी, कुसुम सरोवर जो जगह थी वहां पे बहुत सारे पौधे थे, फूल के पौधे, और राधा रानी और गोपियां जाती थी वहां पे फूल तोड़ने के लिए। तो एक बार वहां पे भगवान ठाकुर जी चले गए माली बन के, और जब ये राधा रानी और गोपिका वहां पे आई फूल तोड़ने के लिए, तो भगवान माली के रूप में बोलने लगे, ए क्यों तुम यहाँ से फूल तोड़ रहे हो, मैं इतना मेहनत से यहाँ पे फूल उगा रहा हूँ, तुम लोग आके यहाँ पे तोड़ रहे हो, भागो यहाँ से, सब भागो यहाँ से, मैं नहीं दूंगा फूल। तो सारी गोपिकाएं भाग गई, राधा रानी भी भागने लगी, तो भगवान ने हाथ पीछे से पकड़ लिया, बोला तुम कहाँ जा रही हो, बोला आपने तो बोला कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए नहीं उनके लिए इंस्ट्रक्शन, तुम ले लो तुमको जितने फूल चाहिए। राधा रानी ने बोला कुछ तो रॉन्ग है इसमें, और फिर भगवान ने अपना सारा वेश निकाला, बोलता अच्छा तुम हो श्याम सुंदर। तो फिर राधा रानी जो है प्यार से सारे फूल तोड़ने लगी और फिर जाने लगी, तो भगवान बोला अब कहाँ जा रही हो, राधा रानी ने बोला कि फूल लिए है तो कभी कभी फूल में धूल होता है ना, तो फूल को मैं धोऊंगी यमुना नदी में, उसके बाद में जो है आपके लिए माला बनाऊंगी। तो भगवान बोलते हैं कि चलो फिर चलते हैं यमुना नदी। तो राधा रानी बोलती है कि आपके साथ मैं नहीं जा सकती चल के, आप मेरे पीछे आओ, क्योंकि सारे देखेंगे कि मैं आपके साथ चल रही हूँ, तो मुझे लज्जा आती है, आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तो भगवान बोला मैं तो आप तुम्हारा साथ छोड़ने वाला हूँ नहीं, एक काम करता हूँ यमुना को ही यहाँ बुलाता हूँ। तो भगवान फिर यमुना नदी को वहाँ बुलाते हैं, और जो कुसुम जो सरोवर वहाँ यमुना नदी प्रवेश करती, और फिर राधा रानी जो है वहाँ पे फूलों को जो है धोके भगवान के लिए माला बनाती है। तो यमुना नदी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे भक्ति जीवन में। यमुना नदी के कृपा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचते हैं ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या की, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, सुना नहीं सुना, ध्रुव चरित्र सुना है, कितने महीने में भगवान को प्राप्त किया, किस लिए कैसे प्राप्त किया 6 महीने में, इतने सारे ऋषि है, इतने सारे मुनि है, हजारों साल भी भगवान की तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिले, ध्रुव महाराज को कैसे मिल गए 6 महीने में। यमुना नदी का प्रभाव है, यमुना के तट पे ध्रुव महाराज यमुना में स्नान करते थे, यमुना नदी का पानी पीते थे। भक्त की कृपा होने से ही भगवान मिलते हैं, भगवान डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। यमुना नदी के आशीर्वाद से ध्रुव महाराज को 6 महीने में भगवान मिल गए। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें वृंदावन धाम से इंट्रोड्यूस हुए हैं, और हम जब भी वृंदावन धाम जाए हमारा ये मेडिटेशन होना चाहिए। बहुत कुछ बदल गया है जब हम वृंदावन जाते हैं, बहुत सारे पंडे लोग हमें बोलते यहाँ पे ये लीला हुई थी, यहाँ पे वो लीला होती, कभी कभी डबल ट्रिपल बोल देते, कोई कंफ्यूज कर देता है, नहीं ये नया गोकुल है ये पुराना गोकुल है। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए जब हम वृंदावन जाते हैं, बाकी सब बदला होगा लेकिन एक चीज़ है, गोवर्धन वही गोवर्धन है, वही यमुना का नदी है, वही व्रज की माटी है, इस तीनों पे हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। एक्चुअली मैं यमुनाष्टक समझाना चाह रही थी, लेकिन आज माइक के प्रॉब्लम की वजह से हमारा आधा घंटा कट हो गया, प्रभु जी आ चुके हैं, तो मैं लेक्चर यहाँ पे बंद करूँगी। लेकिन हो सके तो आने वाले संडे में यमुनाष्टक, आपने कभी सुना है यमुनाष्टक, वल्लभाचार्य द्वारा रचित है ये, और वाले संडे यमुनाष्टक की हर एक लाइन को गाते हुए उसके अंतर भाव को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम आज यही ख़त्म करेंगे। श्री यमुना महारानी की जय, श्री श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।